हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 259 अनय का घर। अपने कमरे में बैठा हुआ अनय लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है और इसके साथ ही वो सुनैना के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि उसे अभी तक इस बारे में नहीं पता कि आदित्य कहीं भी नहीं गया, वो यहाँ पर ही है। उसे सुनैना के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि फ़ोटोज़ में और उसने खुद भी सुनैना की हालत देखी थी, जो कि बहुत बुरी थी, और इसे देखकर उसे इतना तो समझ आ रहा था कि सुनैना आदित्य से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर वो सुनैना को छोड़कर क्यों चला गया? उसे सुनैना और आदित्य की लव स्टोरी में से आदित्य की साइड ही पता है, वो भी सिर्फ इतना कि कॉलेज टाइम से ही आदित्य उसे पसंद करता है। लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी शादी कैसे हुई, इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। उसे लगा कि आदित्य सच में लंदन चला गया है, इसलिए उसने अब उस पर नज़र रखना भी छोड़ दिया, और उसके शहर में होने की बात पता चलने के बाद भी सुनैना या आदित्य में से किसी ने भी अनय को कॉल करके इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो दोनों ही उसे इतना नहीं जानते थे। सुनैना ने ज़रूर आदित्य को इस बारे में बताया कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने सुनैना की मदद की और उसने ही उसे इस बारे में भी बताया था, लेकिन इसके बाद भी आदित्य ने उसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। अनय इन सब के बारे में सोचता हुआ ही लैपटॉप सामने खोलकर बेडरूम में रखे हुए सिंगल काउच पर बैठा है, और उसके सामने एक छोटी ग्लास की वर्किंग टेबल भी है जिस पर उसने लैपटॉप रखा हुआ है। तभी उसका दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है, क्योंकि उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया। उसे इसकी आदत नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही सोता है तो उसे कभी ऐसे दरवाज़ा लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ होते ही उन्हें अपने ख्यालों से बाहर आता हुआ दरवाज़े की तरफ देखता है, और वहाँ पर उसे सुबह की ही तरह नाइट ड्रेस में खड़ी हुई मनस्वी नज़र आती है। लेकिन जैसे ही तरफ देखता है, मनस्वी बिना कुछ बोले या पूछे चुपचाप अंदर आती है और बेड पर आकर बैठ जाती है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? फिर से लड़ने का मूड है क्या तुम्हारा? मनस्वी, जाओ प्लीज़, मेरा भी कुछ भी मूड नहीं है इस वक्त तुमसे लड़ने का। अनय ने उसकी तरफ देखकर एक हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हाँ तो मैं भी तुमसे लड़ने यहाँ पर नहीं आई हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं सिर्फ मॉम की वजह से यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि उन्हें ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि शादी के इतने महीनों बाद भी हम दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं, मनस्वी ने अनय को याद दिलाते हुए कहा। लेकिन ये सच है, हमारी शादीशुदा लाइफ का सच। एक्चुअली हमारी शादी भी सिर्फ नाम की है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी माँ को धोखे में रखना चाहिए, अनय ने एकदम सीरियस होकर कहा। कौन सा धोखा? मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें किसी धोखे में रख रही हूँ। मुझे बस उनकी फ़िक्र है, क्योंकि वो तुम्हें इतना मानती हैं और उन्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे पति और बहुत अच्छे दामाद हैं, इसलिए अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है तो पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। और तुम्हें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्हें यहाँ तक आ चुका है एक बार, और डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह की टेंशन और स्ट्रेस लेने से मना किया है, बस इसीलिए, मनस्वी उसकी बात पर सफाई देती हुई बोली। लेकिन ये सब बोलते हुए वो अनय से नज़रें चुराती हुई इधर उधर देख रही है। हाँ तो इसके लिए तुम्हें मेरे कमरे में आकर मेरे साथ रहना और सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनके सामने सब कुछ नॉर्मल होने की एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ रात के वक्त आकर तुम्हारा या फिर मेरा रूम चेक करेंगी, अनय ने एकदम लापरवाही से कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं है, और प्लीज़ मुझे अब तुमसे कोई बहस नहीं करनी। वैसे भी वो मेरी माँ है तो तुम्हें उनकी फ़िक्र क्यों होगी? तुम तो वैसे भी इतने सेल्फिश हो, कभी तुमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, मनस्वी ने बेड पर पैर ऊपर करके और टेक लगाकर हुए कहा। और उसकी ये बात सुनकर अनय को थोड़ा गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में उठकर उसकी तरफ आया। अनय ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर गुस्से भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रियली मनस्वी, मैं सेल्फिश हूँ और मैंने कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। ये बात तुम बोल रही हो, एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखो पहले, फिर तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि ज़्यादा सेल्फिश कौन है, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। और अनय के इस तरह से सामने आकर ये सब बोलने की वजह से पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर जब इसका ध्यान अपने हाथ पर गया जो कि अनय ने बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, तो वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अनय हाथ छोड़ो मेरा, यू आर हर्टिंग मी, ये क्या कर रहे हो तुम। मनस्वी को पहली बार इस तरह घबराते हुए देखकर अनय ने गुस्से में झटक कर उसका हाथ छोड़ दिया और दरवाज़ा खोलकर सीधा ही कमरे से बाहर निकल गया। अनय के कमरे से बाहर चले जाने के बाद भी मनस्वी को अब तक समझ नहीं आया कि अभी अभी वहाँ पर क्या हुआ है, और वो सब कुछ समझने की कोशिश करती हुई गहरी सांसें लेने लगी और अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ गई। इतने दिनों में आज पहली बार ही उसने अनय को इतने गुस्से में देखा, लेकिन उसे उसके गुस्से की वजह समझ नहीं आई। लेकिन वो इतना समझ गई कि उसे ज़रूर उसकी बातों का बुरा लगा है, लेकिन फिर भी मनस्वी के इस वक्त उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप अपने पैर समेट कर बैठी रही। मुझे शायद ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया, लेकिन इतना गुस्सा क्यों आया, एकदम से वो जल्दी ऐसा बर्ताव तो नहीं करता। अकेले बैठी हुई मनस्वी ये सब कुछ सोच रही है और उसकी आंखों से नींद अब बिल्कुल उड़ गई है, इसलिए चुपचाप जागते हुए अनय के वापस आने का इंतज़ार कर रही है। मनस्वी को इसी तरह जागते हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन अब तक अनय वापस नहीं आया, और तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आहट लगी तो मनस्वी ने जल्दी से अपनी आँखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। अनय चुपचाप कमरे के अंदर आया और मनस्वी को सोता देखकर उसने राहत की सांस ली और आकर बेड की दूसरी साइड पर लेट गया। उसे भी नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो एक हाथ अपने माथे पर रखे हुए लेट गया और उसने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। क्रमशः